ओम शांति। ये होली हंसों का संगठन सभी सफेद पोशधारी ब्राह्मण बाबा के बच्चे संगठित रूप में योग का बल जमा करने के लिए विशेष तपस्या कर रहे हैं। सभी बच्चों को बाबा ने योग की भिन्न भिन्न विधियां बताई हैं। कई बार बाबा कहते हैं, बच्चे योग योग क्या कहते हो, योग तो हठ योगियों का नाम है, भक्तों का नाम है, तुम सिर्फ मुझे याद करो। अब याद की कोई विधि तो नहीं होती, जिससे प्यार होता है उसकी याद तो अपने आप आती है। तो सबसे पहले हर एक अपने आप से पूछना, क्या मेरी सच्ची प्रीत एक बाबा के साथ है? सच्चे दिल से हमने पहचान करके मेरा बाबा कहा है? अगर कोई बच्चे ने दिल से पहचान से कहा है मेरा बाबा, तो वास्तव में यही सच्ची याद है, यही योग है। क्योंकि बाबा कहते ही बाबा नैनों में आ जाता, उसकी याद आ जाती, उसकी शक्तियां आ जाती। आज कोई माता पिता अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, जब उनकी याद आती, कहीं दूर गए हों, देश विदेश में हों, याद करेंगे तो याद करते ही उनके नैनों में वो छवि, उसकी विशेषताएं, सब बातें अपने आप आ जाती है। तो हम सबको भी बाबा ने कहा है, बच्चे कोई आपको माला लेने की, मंत्र जपने की, शिव शिव करने की जरूरत तो नहीं है। कोई कोई हैं भक्ति के संस्कार लेकर के आए हैं, बाबा 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 या शिव 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 करते रहते हैं, लेकिन बाबा ने हम सबको सहज योगी जीवन जीवन, शब्दों को देखना, हम योग लगाने वाले योगी नहीं हैं, लेकिन हमारी ये जीवन ही योगी जीवन है। अमृत वेले से रात्रि तक मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बात करूं, तुम्ही से सुनूं। जिसने अपनी स्थिति को ऐसा एक वृत्ता बनाया है, वृत्ति में केवल एक बाबा ही बसता है, बाबा ही मेरा संसार है, उन्हें योग लगाने की मेहनत नहीं लगती। और बाबा अपने बच्चों को मेहनत करते हुए देखना भी नहीं चाहता। मेरे बच्चों ने भक्ति काल में कितनी मेहनत की है, कितना मुझे पुकारा, ढूंढा, मंदिरों में भटके, गुरुओं के पास गए। एक हमारे पास भाई आए थे, पहले पहले जब ज्ञान मिला आसाम की तरफ से, बुजुर्ग थे, बाबा के सामने आए और ऐसे शीश नीचे करके कहते हैं, बाबा आपको ढूंढते ढूंढते मेरी सारी टिप्पणी घिस गई, एक बाल नहीं बचा। बहुत रमणीकता से बाबा कहे, बाबा आपको कितना मैंने ढूंढा, कहाँ कहाँ गए, सब कुछ लुटा दिया। और इतना प्यार से बाबा को ऐसे देखते देखते एकदम नैन गीले हो गए, आप अभी मिल गए। तो हम सब जिसको इतना ढूंढ रहे थे, इतनी मेहनत कर रहे थे, कार रहे थे, भटक रहे थे, बाबा हमारा बन गया। अब उसको याद करने के लिए विधियों की जरूरत है क्या? विधि चाहिए? जिसका सच्चाई प्यार है, प्राप्तियां, सबसे पहले तो आप अपने जीवन को देखो, बाबा ने अपना बनाया। जैसे कोई बाबा एक शब्द यूज करते हैं, कोई माँ बाप किसी बच्चे को ऐसे किचड़े के डब्बे में रख के आ जाएं, कोई उनका ध्यान न रख रहा हो और कोई उनको उठा करके उनको साफ करे, स्वच्छ कर ला के धुला के वस्त्र पहना के और फिर उसकी अच्छी पालना करे, तो पहले वाले माँ बाप थोड़ी याद रहेंगे जिन्होंने जन्म दिया। लेकिन जिन्होंने इतनी ऊंची पालना दी, जिन्होंने इतना श्रेष्ठ वर्षा दिया, वो तो नैनों में सदा घूमता ही याद ही रहता है। तो हम सबको भी बाबा ने कलयुग के कीचड़ से निकाला है, जहां विकारों की दलदल थी, जहां पर हर एक आत्मा स्वार्थ के अधीन होकर के एक दूसरे को प्यार कर रही थी, विकारी प्यार था, कुछ न कुछ इच्छाएं तृष्णाएं उनके कारण हम एक दूसरे में अटके और लटके थे, संबंध बंधन का रूप बन गए। वैसे तो संबंध के बिना आत्मा इस सृष्टि पर खेल नहीं खेल सकती। सतयुग से लेकर के सबसे पहले शरीर से, शरीर के माँ बाप से संबंध हुआ, फिर परिवार बने और आदि काल से आज तक प्रवृत्ति मार्ग चलता आया। बीच में निवृत्ति मार्ग की भी जरूरत पड़ी, क्योंकि बहुत विकारी, बहुत पतित जब बन गए तो बाबा कहते हैं जब ये वृक्ष बहुत गिरने जैसा हो जाता है तो मैं बीच में ऐसी आत्माओं को भेजता हूँ जो इसको थमा सके, इसको रोक सके, नहीं तो एकदम गिर जाता, पतित बन जाते। तो ये भी एक अलग अलग धर्म, पिताएं सन्यास धर्म हुआ और पवित्रता के बल पर महत्व तो दिया और उस पर इनको टिका करके रखा, आज यहां तक पहुंचाया। लेकिन अब ये पूरा ही वृक्ष एकदम पुराना जड़ी भूत हो गया है, इसको अभी टिका देने की जरूरत नहीं है, इसको तो अभी गिराने की जरूरत है। जब ये गिरेगा तब नया विश्व बनेगा, नया संसार आएगा, नया वृक्ष बनेगा और उस वृक्ष की उत्पत्ति, उसकी पालना, उसकी वृद्धि योग बल से होगी। बहुत वंडरफुल बात है, ये संसार का कोई भी व्यक्ति इस बात को नहीं समझ सकता। जब कोई कहता है आप पवित्र बनो, योगी बनो, तारे बुद्धि होंगे, बुजुर्ग होंगे, जब बांधपस्ती होंगे तब हम बन जाएंगे, लेकिन बाबा ने कितनी ऊंची समझ दी कि अभी सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है, सबकी अंतिम श्वासें हैं, चाहे वो आज जन्म लिया है, बच्चा है, छोटा है, कलयुग की अंतिम श्वासें हैं, सृष्टि का अंत आ चुका है। इसलिए हर आत्मा को पवित्र और योगी बनना है और जब वो योगी बनेगा, योग का इस समय बल जमा करेगा, तब सार से नई सृष्टि का प्रारंभ होगा, योग बल की रचना होगी। कलयुग के अंदर बिना भोग बल के, बिना विकारों के बच्चे का जन्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये सृष्टि ही भोग बल की है। और एक बहुत वंडरफुल ये बात है, अभी कलयुग की जनरेशंस खत्म हो रही, खत्म की जा रही हैं। विचार करना, जो परिवार के परिवार ज्ञान में चलते हैं, जिन्होंने अपने बच्चों की शादियां नहीं की हैं, भले लोग कहते हैं अभी कुलदीपक कौन बनेगा, कहते हैं ना कुलदीपक कौन बनेगा, और बाबा कहता है कलयुग में कुल चलाना ही नहीं है, इसका अंत है, हमको तो नए कुल की, सतयुग की रचना करनी है और उसके लिए योगी जीवन बनानी है। हम सबको इस महत्व को बहुत ध्यान पर रखना है कि जो ये दो व्रत हमने लिए, जन्म से बाबा ने व्रत दिया पवित्र बनो, योगी बनो, पहले दिन का पाठ, इस ईश्वरी विश्वविद्यालय का प्रारंभ, विद्यारथी जीवन इसी से हुई, हमें इस जीवन में पवित्रता का व्रत लेना है। भले घर गृहस्थ में रहें, परिवार में रहें, समाज में रहें, लेकिन विकारों की आग न लगे। और विकारों की आग न लगे उसके लिए योग चाहिए, बाबा से बहुत प्यार चाहिए। जिस आत्मा का जिगरी बाबा से प्यार है, प्यार का आधार ही है आत्म अभिमानी स्थिति। अगर आत्मा ही नहीं समझा अपने आप को तो बाबा से प्यार नहीं होगा, और प्यार नहीं होगा उसकी शक्तियों का अनुभव हम नहीं कर सकेंगे। इसलिए यथार्थ योग की पहली विधि जो बाबा ने समय पर समय मुरलियों में सुनाई है, बच्चे अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो। आप जब भी योग करते हो ऐसे नहीं बैठ गए आकर के बाबा बाबा कहने लगे, मुरली की बातें याद कर ली, कोई ऐसी बात चिंतन में लाई और खुशी में योग लग गया। कभी कभी की बात ठीक है, लेकिन जब हम बैठते हैं तो पहली विधि यही है कि हम इस देह भान से, इस देह से अलग एक चैतन्य शक्ति आत्मा है, एक लाइट है, एक माइट है, इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान एक चमकता हुआ सितारा है। बाबा को याद करने के पहले आपको अपने स्वरूप का चिंतन करना होगा। अपने स्वरूप में स्थित होकर के स्वधर्म में स्थित हो जाओ। बाबा की पहली श्रीमत मिली, देह सहित देह के धर्मों को भूलकर मुझे याद करो, मामे कम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ, मेरी याद में आ जाओ। और उसके लिए इन देह के संबंधों के बंधनों से, इन धर्मों से अपने आप को मुक्त करो। तो योग की यथार्थ विधि, सही रूप से योग जिसको हम कहें यथार्थ योग, अपने आप को सब देह और संबंधों के संस्कारों के बंधन से फ्री करके अपने आप को एकदम आत्मा हूँ, एक लाइट हूँ, एक शक्ति हूँ, इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान एक चैतन्य सितारा हूँ, इन आँखों से देख रही हूँ, कानों से सुन रही हूँ, मुख से बोल रही हूँ, मैं इस शरीर के अंदर एक चैतन्य शक्ति हूँ। अगर ये अनुभव आपने कर लिया तो बाबा तो इसी स्वरूप में है, उसको भी कोई देह नहीं है, कोई संबंध नहीं है। अपने आप बाबा के साथ आपकी तार, आपका कनेक्शन जुट जाएगा। जैसा मैं हूँ ऐसा मेरा बाबा है, लेकिन समान स्वरूप में होंगे तो करंट आएगी। जब मिसाल हम क्या देते हैं, जब कोई को नए कोर्स कराते हैं तो टीचर से ही कहती हैं, अगर आज विद्युत कनेक्शन लेना होता है, पावर हाउस तो अपनी पावर देता है, सब जगह लाइन आई है, लेकिन कनेक्शन लेने वाले को ध्यान देना पड़ता है, वो तार तो वहां से नंगी आई, उसके ऊपर रबड़ नहीं है, और हमारी तार के ऊपर रबड़ है, रबड़ को हटाना पड़ता है, तार को तार से समान रूप में जोड़ना पड़ता है, उसके बाद करंट का फ्लो शुरू होता है। अगर कोई ऐसे ही कहे, नहीं नहीं मैंने तो कनेक्शन बहुत अच्छी तरह से जोड़ दिया लेकिन रबड़ नहीं हटाई, ऐसे ही जोड़ दिया, और पूरा आधा कल्प हम लोगों ने ऐसे जोड़ने का प्रयास किया है, भक्ति काल के अंदर क्या किया, भले भगवान को निराकार रूप में याद किया, ज्योतिर्लिंगम ज्योतिबिंदु को ही याद किया, लेकिन खुद को उस रूप में स्थित नहीं किया, खुद को ये नहीं समझा, अपने को देह समझ करके देह भान में आकर के भगवान को भी हमने पुकारा, याद किया, इसलिए उसकी शक्तियां उससे हम सब वंचित रह गए। जो मिलना चाहिए वो मिला नहीं, क्यों, कनेक्शन ठीक नहीं था, विधि यथार्थ नहीं थी। इसलिए बाबा ने बच्चों को पहली यही विधि बताई कि बच्चे शरीर तो आपको पार्ट बजाने के लिए मिला है, खेल खेलने के लिए मिला है, ये आपका ड्रेस है, आपका चोला है, आप ये नहीं हो। अब चलते फिरते जो इस आत्मा ने ये अभ्यास कर लिया, मैं आत्मा हूं, मैं भ्रकुटी आसन पर हूं, मैं शरीर से भिन्न एक शक्ति हूं, जो मैं हूं, अपने स्वरूप का चिंतन, स्वधर्म का चिंतन, मेरा स्वधर्म शांति है, प्रेम है, आनंद है, पवित्रता है, ये मेरा स्वधर्म है, ये मेरे निज संस्कार हैं, यही आत्मा के निजी गुण हैं, उनमें स्थित होना। और जब हम इसमें स्थित होते हैं तो बाबा तो इसका सागर है, शांति का सागर है, प्यार का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है, अपने आप बाबा से कनेक्शन जुटता है, शक्तियां आना शुरू हो जाती, जो हमारे अंदर कमियां हैं वो भरती जाती। सिद्धियां क्या हैं? अगर आपका योग यथार्थ है, कनेक्शन जुटता है, तो आत्मा मास्टर शांति का सागर है, मास्टर प्यार का सागर है, सुख का सागर है। जो विकार, जो बुराइयां हमारे जीवन में आई हैं, उन सब पर अपने आप विजय हो जाएगी, संस्कार चेंज हो जाएंगे। सबसे बड़ी सिद्धि है योग की। अगर हम 10 साल 15 साल 20 साल से योग कर रहे हैं, हमने अपने गुस्से को ही नहीं जीत पाया, हमारी काम विकार की उत्तेजना ही शांत नहीं हुई, हमारा ही अनासक्त नहीं बनी, चाहिए 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 उसके पीछे लगे हैं। अहंकार ऐसा है, कुछ भी थोड़ा सा करते हैं, मैं भी कुछ हूं, मान आ जा रहा है, दिखावा बहुत होता है। अगर बाबा से हम सही दिशा से कनेक्शन जुटा, योग है, यथार्थ विद्वत योग है, तो वो योग हमारे हर कर्म से दिखाई देने लगेगा। हमारी स्मृति एक बाबा दूसरा न कोई, हमारी दृष्टि एकदम रूहानी आत्मिक दृष्टि बनती जाएगी, किसी के शरीर पर, किसी के रूप पर, किसी के रंग पर खिंचाव नहीं, आकर्षण नहीं, ये सब आत्माएं हैं, पारधारी हैं, खेल खेल रही हैं। दृष्टि बहुत पवित्र और शुद्ध बन जाएगी, बोल मधुर हो जाएंगे, किसी के प्रति नफरत वाले बोल, कट्टू बोल, दुखदाई बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल, अगर कोई आत्मा बोल रही है, माना अपने स्वधर्म को उसने पहचाना नहीं है, योग यथार्थ नहीं है। योग यथार्थ है तो वाणी अपनी सब जाएगी, उत्तेजनाएं समाप्त हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगे। चेक करना विधि पूर्वक योग, संस्कारों में दिव्यता, अलौकिकता, रूहानियत अपने आप झलकने लगेगी। दृष्टि निर्मल है, बोल मधुर है, स्वभाव मिलनसार है, व्यवहार में है, ये हम सब अपने हैं, एक कोई द्वेष भाव द्वैत भाव नहीं रहता। सिद्धियां ये चमत्कार वाली सिद्धियां नहीं, हाथ लगा दिया ठीक हो गया, भोग दे दिया इसकी बीमारी ठीक हो गई, दृष्टि दे दिया तो इसका ये हो गया, ऐसे लोग चमत्कार समझते हैं। और दुनिया में चमत्कार को ही नमस्कार कर रहे हैं, जो चमत्कार करके दिखा दे उसके पीछे पीछे भागते हैं, पैसा भी देते हैं, नहीं देते हैं, कभी धोखा भी खा लेते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा सिद्धि पुरुष आया है, अरे ये तो एक बार कुछ दे हाथ लगा देता है बीमारी ठीक हो जाती, ऐसा हो जाता, उसके पीछे पीछे लट्टू। और बाबा तो ये करता नहीं है, ये चमत्कार बाबा नहीं दिखाता, बाबा तो कहता है विधि याद है तो सब सिद्धियां आपके पीछे पीछे। अगर विधि को नहीं चलोगे, बाबा से कुछ भी मांगते हो बाबा कुछ नहीं देने वाला है। बाबा से अगर मदद चाहिए तो उसकी विधि है, पहले हिम्मत का कदम आप आगे बनाओ, उठाओ। अगर आप हिम्मत नहीं रखते हो तो बाबा कोई को मदद करने के लिए बंधा हुआ नहीं है। भले हम बच्चे हैं लेकिन विधि पूर्वक अगर हम चलेंगे तो सब प्राप्तियां हमें हो जाएंगी। कदम उठाने की जरूरत है, हजार गुना मदद बाबा की है। इसलिए सब ध्यान देना, बाबा से मांगने की जरूरत नहीं, बाबा को मांगना शब्द अच्छा ही नहीं लगता। भक्ति के संस्कारों में बाबा मदद करो, बाबा ये कर दो, बाबा आपकी कृपा चाहिए, आपकी आशीर्वाद चाहिए, कईयों को बोलो भाई आप मधुबन में क्यों नहीं आ रहे, बाबा की कृपा होगी तो आएंगे, बड़ी बाबा की कृपा चाहिए इनको। पहले तो हित रखो ना आप, उमंग उठाओ, कदम उठाओ, बाबा मदद करेगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, बच्चे कभी बाबा से मांगते नहीं है, योग में भी मांगना नहीं कुछ भी, मैं योग करूं बाबा ये काम कर देगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। बाबा कहता है ऐसा तो है कि स्वार्थ भाव से तुम मुझे समय पर याद करो फिर भूल जाओ। भक्ति में तो यही किया था, ज्ञान में भी ऐसे ही कई बच्चे कर रहे हैं, ये विघ्न आ गया, योग करो भट्टी करो बैठ, ठीक है थोड़े समय के लिए कुछ सिद्धि जाती है, मदद मिल जाती है, लेकिन यथार्थ विधि नहीं है। यथार्थ विधि ये है आपका स्थान केवल केंद्र नहीं, जिस स्थान पर आप रहते हैं अमृत वेले से रात्रि तक उस घर की दिनचर्या योगियों की दिनचर्या बना, योगियों का रहना, योगियों का खाना, योगियों की ड्रेस, योगियों के घर का श्रृंगार कैसा होगा, शोबाजी वाला नहीं, दिखावे वाला नहीं। अगर बाबा किसी स्थान पर रहते हैं हम तो कहते हैं बाबा गुड मॉर्निंग, आप आओ बाबा परम धाम घर से आपके घर में आ जाए, सच्चे दिल का स्नेह चाहिए, सच्चाई चाहिए, साथ साथ स्वच्छता की जरूरत, बहुत स्वच्छ पवित्र चाहिए, निर्मल मन। अब बाबा बार बार आए जाए, बच्चे उसको याद करें और बाबा आए, वो कितना होगा, वहां कोई इविल स्पिरिट्स आ सकते हैं क्या, विकारी भावना वाली आत्माएं भी उस स्थान पर प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आप सब योगी आत्माएं अपने अपने घर को सुंदर आश्रम बनाओ, आश्रम रूहानियत है, आश्रम माना जहां सच्चा स्नेह है, और आश्रम माना जहां आश्रय मिल है, और आश्रम माना जहां स्वच्छता है, पवित्रता है, जरा भी गंदगी नहीं है। योगी का स्थान जहां पर वो बैठे रहे खाएं बात करें, वहां पर जरा भी बाह्य मुक्ता का वातावरण नहीं होना चाहिए। जो खा रहे हैं जैसे आए, हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मजाक रहे हैं, वातावरण अगर है तो घर मंदिर नहीं कहला सकता, घर आश्रम नहीं कहला सकता। बाबा के बच्चे जो पवित्र प्रवृत्ति में चल रहे हैं, पूरी प्रवृत्ति मार्ग के पति के साथ एक मत वाले हैं, श्रीमत का पालन कर रहे हैं, मंदिर होने चाहिए। और मैं समझता हूँ हमारे राजकोट में ऐसे बहुत हैं जो हाथ उठाओ, जो प्रवृत्ति पूरा ज्ञान में चले, देखो इतने सब बैठे, आधे से ज्यादा है। क्या आप सबने अपने अपने घर को ऐसा सुंदर आश्रम बनाया है? जिन्होंने बनाया वो हाथ उठाओ। भोग लगता है रोज? अब बाबा को जहां आपने बिठाया, जहां बाबा को याद करते हो, जहां भोग लगता है, वहां पर योग का कितना अच्छा वातावरण होना चाहिए। कोई भी विकारी भावनाओं वाला, कोई भी साधारणता उस घर के अंदर ना हो, ऐसा योग का किला बना दो। संगम युग पर ऐसी योग की शक्तियां जमा कर लो जो आधा कल्प तक सुखमय संसार सत्युग और त्रेता के अंदर प्रवृत्ति के अंदर कभी भी तू मैं भी नहीं होगा, टकराव भी नहीं होगा। ऐसी पवित्र प्रवृत्ति की स्थापना संगम पर भगवान के द्वारा हो रही है, और उसके लिए उन्होंने अपने बच्चों को सहज राज योगी बनाया है। सहज हठ योगी नहीं, कोई क्रियाकांड कर्म कांड नहीं, कोई दिखावे वाला योग नहीं, बहुत अच्छी खुशनुमा जीवन में रहो, बहुत हल्के रहो। योग के लिए तीन चीजें चाहिए, आधार है वो, और वो आधार अगर नहीं है तो योग कितना भी करते रहो, मेहनत करते रहो, युद्ध है। पहले चाहिए बहुत शांत धैर्यवत स्थिति। आत्मा का सबसे विशेष गुण धैर्यता है। कोई भी बातें नीचे ऊपर तो होंगी, जहां परिवार है, ग्रह है, व्यवहार है, धंधे हैं, बच्चे हैं, परिवार के बीच में, वहां पर कुछ नीचे ऊपर बातें तो आएंगी होंगी, लेकिन तुरंत जवाब दे करके आपस के संबंधों को ठुकरा देना, मधुरता को खत्म कर देना, उतावले होकर के कह देना तूने ऐसा किया, तुम गलत है, भले गलत है। बाबा ने, दादियों ने इस बात पर बहुत अंडरलाइन कराई, किसी को तुरंत कट नहीं करो, कोई भी बातें आती हैं धैर्यता से सुनो, समझने की कोशिश करो, और अगर नहीं राइट है, श्रीमत के विपरीत बात है, तो जब समय देखो तब इशारे में बोलो। तुरंत काटोगे तो उस व्यक्ति की मन की शक्तियां डिस्टर्ब हो जाएंगे, न खुद का योग लगेगा न दूसरे का योग लगेगा। इसलिए योगी जीवन में हरेक को एक व्रत लेना है, कहते हैं एक चुप सौ भला, कहते हैं हिंदी में एक चुप सौ भला, माना अगर एक बार आप चुप हो गए तो सौ भलाइयां सौ कल्याण के काम हो जाएंगे, लेकिन अगर तुरंत जवाब दे दिया तो टकराव हो जाएगा, फिर हाथ की ताली नहीं लेकिन मुख की ताली बज जाएगी। हम सबको बहुत ध्यान देना है, हम योगी जीवन में हैं, इसलिए धैर्यता हमारा प्रथम गुण होना चाहिए, बहुत धैर्यवत। सुनो जरूर, सुन लो, लेकिन तुरंत एक्शन में नहीं आओ, रिएक्शन नहीं करो। दूसरा, बहुत हल्के रहो, कोई भी बोझ अपने ऊपर लेके चलोगे तो योग नहीं लगेगा। संगम युग की सबसे बड़ी विशेषता है, जब भगवान धरा पर आता है तो पहले कहता है बच्चे तू अपने सारे बोझ मुझे दे दे, मैं सर्वेंट बन करके आया हूं, क्यों तुम अपनी अपनी मेरी 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 की जवाबदारियां, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा बिजनेस, मेरी ये, कहां से तेरी आई, तुम तो पार्टधारी हो, तुम तो एक्टर बन करके खेल खेलने के लिए आए हो, तुमने जो अपना अपना बना करके बैठ गए और उसका बोझ सिर पर लेके घूम रहे हो, जब तक इस बोझ को नहीं उतारोगे तब तक प्रभु मिलन का सुख नहीं ले सकते, यथार्थ योग नहीं होगा। जो हल्के हैं, कोई बंधन नहीं, हम लोगों को क्या है, कुछ नहीं, अपना कोई अपना नहीं, कितने भी सेवाएं हैं, बाबा करण करावन हार करा रहा है, हमको क्या करना है, हम सिर्फ निमित्त हैं, बाबा के आगे समर्पित हैं, जो कराना चाहे करा ले, बोझ नहीं है, चिंता नहीं है, ये काम ये काम ये काम। जो निश्चिंत जीवन में डबल लाइट स्थिति में रहते हैं वो सहज योगी बन जाते हैं। आप सब अपने बोझों को आज बाबा के आगे हवाले कर देना, अपनी अपनी कापी पर लिख दो, जो भी बोझ हो ना एक कापी पर एक कागज पर लिखो और बाबा के कमरे में अमृत में ले जाके ऐसे भंडारे में डाल देना, बाबा तुम ले ले बोझ, मैं नहीं लूंगा, बहुत हल्के हो जाओ, देखो कैसे योग लगता, अपने आप उड़ जाओगे। लेकिन अगर जवाबदारियां हैं, कईयों को पास्ट के किए हुए कर्म का बोझ, मेरे से ये हुआ, मेरे से ये हुआ, मेरे ऐसे संस्कार हैं, मेरी ऐसी आदतें हैं, बेचारे अपनी आंतरिक खुशी का अनुभव नहीं कर सकते, जबकि बाबा कहते हैं खुशी और नशा योग का पहला आधार है। अब जिसके पास खुशी के संकल्प नहीं है, रूहानी नशा नहीं है, वो बैठ जाए ऐसे उदास, क्या योग लगेगा उसका। योग के लिए तो बहुत अंदर की आंतरिक खुशी चाहिए, किससे मिलने जा रहे हैं, कौन है मेरा बाबा, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, पुकार रही है, दर दर भटक रही है, वो मेरा बाबा बन गया। और सिर्फ बाबा नहीं बना, तीन स्वरूप से हमारी इतनी ऊंची पालना कर रहा है, बाप बन करके हमें नया जन्म दिया, शूद्रपन के जन्म से हमें ब्राह्मण बना दिया, स्वच्छ बना दिया, पवित्र बना दिया, शिक्षक बनकर के इतनी ऊंची पालना और पढ़ाई पढ़ा रहा है, कितनी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ा दी, उलझाया नहीं है कोई बात में, मुझाया नहीं, आप कौन हो, आपका घर कहाँ है, आप किस लिए आए हो, कैसे जन्म लिए हैं, कैसे आदि मध्य अंत काल व्यतीत हुआ है, त्रिकालदर्शी बना दिया, स्वदर्शन चक्रधारी बना दिया, नॉलेज फुल बना दिया, एक एक बच्चे से पूछ लो, पढ़ा लिखा है या बिल्कुल अनपढ़ है, गांव का है या शहर का है, हर बच्चे को अपना ज्ञान है, अपने घर का ज्ञान है, अपने पिता का ज्ञान है, कर्मों का ज्ञान है, चक्कर का ज्ञान है, पुनर्जन्म का ज्ञान है। कितना ऊंचा ज्ञान ज्ञान सागर बाबा ने अपने बच्चों को दिया है। चिंतन करो, सुमिरन करो, आत्मा एकदम खुशी में गदगद हो जाएगी। और जहां खुशी और नशा है वहां योग तो ऐसे सहज लग जाता है। लेकिन ये उधर के संकल्प, उधर के संकल्प युद्ध कर रहे हैं। बाबा कई बार कहते हैं ना, मेरे बच्चे योगी नहीं है, योद्धे हैं। और युद्ध करते करते अगर शरीर छोड़ दिया तो कहां जाएंगे? तीर कमान मिलेगा हाथ में, ध्यान देना, बांसुरी नहीं मिलेगी श्री कृष्ण वाली। इसलिए युद्ध नहीं करो, मेहनत नहीं करो। हमारी कमी और कमजोरियों के कारण युद्ध चलती है, है नहीं युद्ध, लेकिन हम उन्हीं का चिंतन करते रहते, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। अरे जो बाबा स्मृति दिला रहा है, बच्चे तुम कौन हो, उस स्त्री में ठो करके योग करो, देखो कैसे फर्स्ट क्लास योग लग जाए। ऐसे बैठेंगे उड़ जाएंगे। 500 मान याद दिलाता हूं आपको, बहुत छोटे छोटे हैं। योगाभ्यास में अगर सारे दिन में आप 5 अभ्यास ही करो, बहुत सारे समान थे। एक बार मैंने 365 समान की लिस्ट सबको भेजी थी, हजारों निकाल दिए, लेकिन 365 में की एक दिन नया नया समान रोज लो सेंटर पर। 500 समान रोज के दिनचर्या में अगर आप उतार लो, मैं समझता हूँ सहज योगी, स्वतः योगी बन जाओगे, निरंतर योगी बन जाओ। पहला समान ले लो, बाबा मैं आत्मा में चमकती हुई मस्तक मणि हूँ। बहुत शुद्ध चमकती हुई मणि का अनुभव करो। और कभी ये मणि बाबा के पास बैठ करके मणि के साथ मणि बैठ जाए, ब्रह्मा बाबा की भ्रकुट्टी में जैसे शिव बाबा चमकता है, उनकी भ्रकुट्टी के बिल्कुल पास में जाकर के बैठ जाऊं, बुद्धि से, प्यार से, जैसे माताएं प्यार से कहते ना, मेरा बच्चा मेरे मस्तक में, मेरे दिल में रहता है। क्या है ये प्यार? उसकी याद, उसका स्नेह, उसकी शक्ति रहती। ऐसे बाबा को भी प्यार से मस्तक मणि समझ करके कभी अपने मस्तक में ले आओ। एक बार बाबा ने बड़ा अच्छा योग का अभ्यास कराया था, जैसे मैं त्रिमूर्ति हूं ऐसे आप बच्चे भी त्रिमूर्ति बन करके योग करो। अभी हम करेंगे आधा घंटा त्रिमूर्ति बन। मैं आत्मा इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूँ, दादा दोनों ही चमकती हुई मणियां। तो दोनों मणि तो ही नहीं, अब वो दोनों मणियां ऊपर से आई और उस भ्रकुटी पर जैसे गुलजार दादी के बीच में यहां करके बैठ जाती, ऐसे मैं आत्मा उनकी शक्तियों का दिव्य अनुभव कर रही हूँ। मूर्ति बन जाओगे, एक तरफ परम पवित्र शिव बाबा, बीच में बच्चा, और साथ में हमारा आदि पिता ब्रह्मा बाबा। इसे भी कह सकते एक तरफ हमारी अलौकिक माँ ब्रह्मा, माता परमात्मा, मैं माता पिता के बीच में ऐसे बहुत छोटा सा बच्चा बैठा हुआ हूँ। योग करो, कितना मजा आ जाएगा आपको, रस का अनुभव होगा। तो ये एक बहुत सुंदर समान है कि मैं मस्तक मणि हूँ। कई बार बाबा कहते हैं सब अंधकार में है, आप जहान के नूर नूरतन हो, पूरे जहान को रोशनी देने आता हूं, मैं नूर हूं, नूर के बीच में कैसे चमकती है। अगर वो बिंदी न हो, उसके ऊपर मैल आ जाए, मोती आ जाए, तो नैन होते भी काम नहीं करते। जहान का नूर, बाबा के नैनो नूरे रत्न, चैतन्य आत्मा मैं नूरे रतन हूँ। और उसके दिल पर विराजमान रहने वाली दिल तनसीन दिल हूँ। ये समान है, भिन्न भिन्न समान है। इन समानों की स्मृति में बहुत नशा चढ़ता है, और जब उस नशे से हम रहते हैं तो नैनों में बस जाता है, दूर नहीं है। लगता है हर दिल में, हर आसन पर बाबा है। भक्ति में तो अंदर हर गोपी के साथ कृष्ण है, लेकिन गोपी के साथ चैतन्य में श्री कृष्ण कैसे होगा? जादूगर थोड़ी था जो इधर इधर करके चलेगा, वो तो यादगार बनाई है। लेकिन शिव बाबा तो हर गोपी के साथ रह सकता है, रहता है ना, क्रेत है, क्या है? हर एक के साथ रह सकता है, इतना दिल बाबा कहो और बाबा आपके साथ साथ कंबाइंड हो जाए। गोपी माना केवल बहने नहीं, भाई भी। प्यार दिल का है, जिन्होंने कर्म इंद्रियों को जीता हुआ है, कर्म इंद्रिय जीत हैं, वो गोप और गोपी के साथ बाबा रहता है। तो मैं तनसीन हूँ उनके दिल पर विराजमान और वो मेरे दिल में रहने वाला। पिछली बार मुरली में क्या कहा, बच्चे अगर आपसे कोई पूछे भगवान कहाँ रहता है, तो वो मेरे दिल में रहता है, नरपी है। कहते है रिग्लानी कर दी तुमने, मैं सबके दिल रहता हूँ ना, उनके प्यार उनकी याद समाई हुई है दिल के अंदर। और कुछ है ही नहीं, बाबा बाबा बाबा, मैं बाबा शिव शक्ति कंबाइंड हूँ। शिव स्थिति रहो, शिव बाबा सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तियों से शिव के साथ कंबाइंड शिव शक्ति हूँ। पांडव शिव शक्ति है इस समय, पांडव पति के साथ कंबाइंड है, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहो। बाबा आपके इस विश्व परिवर्तन के कार्य की राइट हैंड भुजा हूँ, लेफ्ट हैंड एक तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाबा कहता है बच्चों ये नशा रहना चाहिए, मैं बाबा आपका राइट हैंड हूँ। जो श्रेष्ठ कार्य है, जो अच्छा कार्य है, जो कोई सुखा के लिए मैं तैयार हूँ। राइट हैंड को इसीलिए यूज किया जाता है, बहुत माना जाता है, हर श्रेष्ठ कार्य में, पूजा के कार्य में, स्वच्छता के कार्य में इसी हाथ का प्रयोग है। बाबा के राइट हैंड भुजा, जहां पर बाबा के कार्य में कोई भी सहयोग की जरूरत है, कहना न पड़े हाँ जी मैं हाजिर हूं। कई बार बाबा कहता है सहयोगी मेरे बच्चे सहज स्वतः योगी, उनको योग लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है, अगर उससे बाबा के कार्य में सहयोग देते हैं तो स्नेह और स्नेह ही योग का आधार बन जाता है। तो आप सब बाबा के बच्चे 500 मान, मैं मस्तक मणि हूँ, मैं नैनों का नूर हूँ, मैं बाबा के दिल तक तनसीन दिल डूबा हूँ, मैं बाबा के साथ कंबाइंड शिव शक्ति हूँ, और मैं बाबा की राइट हैंड भुजा हूँ। याद तो रह सकते हैं ना, सारे दिन में याद कर सकते हैं, कार में जाओ, कोई भी सेवा में जाओ, बाबा मैं आपकी राइट हैंड भुजा हूँ, ये जो कुछ कर रहा हूँ आपके लिए तो कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ? नए विश्व की स्थापना के लिए बाबा ने अपने बच्चों को सेलेक्ट किया है। हम सब भगवान के लिए, भगवान के इस महान कार्य को संपन्न करने के लिए उनकी भुजाएं हैं। वो कैसे करेगा बिना भुजा के काम? इतने बच्चों को अपना साथी बनाया है, इसलिए बाबा को कहते हैं वो हजार भुजाओं वाला है। तो उस हजार भुजाओं वाले, हजार के असहस्त्रों भुजाएं हैं भगवान की, और उसके साथ हम सब वो भुजाएं हैं जो भगवान के इस स्थापना के कार्य में निमित्त है। उन बच्चों का योग इतना सहज लग जाता है जो सदा ही बाबा 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 कहकर के यज्ञ में अपना सब कुछ हल करते हैं, कभी भी सोचते नहीं, पूछते नहीं। कई लोग कई बार कह देते हैं जब आवश्यकता हो मुझे याद करना, बाबा कहता है मुझे तेरी आवश्यकता पड़ेगी क्या? भगवान को कोई के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा क्या? जिन बच्चों को अपना भाग्य बनाना होता है वो कोई से पूछते नहीं है। भाग्य विधाता भगवान हम बच्चों के हाथ में कलम देके कहता है जितनी लंबी रेखा भाग्य की बनाने बना लो, पूछने की और मांगने की आवश्यकता नहीं है। मैं कलम तुम बच्चों को देता हूँ, है सबके हाथ में, कौन सी कलम है? श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ कर्म। और वो श्रेष्ठ कर्म जिसके लिए कहा गया है इस हाथ से करो, इसको भी पता न चले, गुप्त दान महापुण्य। जो ऐसे श्रेष्ठ कर्म में सदा सहयोगी रहते हैं वो सहज योगी बन जाते हैं। इसलिए आप बाबा के बच्चे सब सहज योगी, स्वतः योगी, निरंतर योगी अगर इसका अनुभव करने लगेंगे तो सब सिद्धियां आपके पीछे पीछे आएंगी। सिद्धियों के पीछे आपको भटकने की जरूरत नहीं, सिद्धि माना सफलता। संकल्प करो हो जाए, हम लोगों का अनुभव ऐसे होता है संकल्प उठता है और काम हो जाता है, सोचने की और बोलने की क्या जरूरत है? लेकिन हमारे संकल्प बड़े शुद्ध, बहुत क्वालिटी वाले और केवल श्रीमत के अंदर होने चाहिए, चाहना वाले नहीं, मुझे चाहिए, ये चाहिए, मेरा नाम मान शान, वो संकल्प नहीं, वो पूरे नहीं होते। लेकिन अगर हम विश्व कल्याण के लिए बाबा के सेवाओं के लिए कोई संकल्प शुभ कर लें तो कोई कार्य आज तक रुका नहीं है। एक से एक अच्छे से अच्छा हुआ है, संकल्प उठा और हो गया, ये सिद्धि है। संकल्प सिद्ध होते हैं, बोल सिद्ध हो जाते हैं। कहीं स्थानों पर जाओ और कुछ बोल दो, कार्य हो जाता है, सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, संकल्प की, बोल की, कर्म की। और योगियों के जहां कदम पड़ जाएं, कहते हैं योगियों के कदम पड़ गए, सब कार्य अपने आप हो जाते हैं, आत्मा खुद निर्विघ्न बन जाती है, अपने सेंटर्स को, अपने स्थानों को निर्विघ्न बना देती, तो आप सब बाबा के बच्चे सिद्धि स्वरूप बन जाओ। और उसकी विधि यही है, निरंतर योग युक्त होकर के रहो। एक बाबा ही मेरा संसार है, मेरे दिल में वो है, अंदर भी वो, बाहर भी वो है, उसके सिवाय और कोई भी नहीं। जब सच्चे दिल से बाबा कहोगे, बाबा आपको भिन्न भिन्न ऐसे अनुभव कराएगा जो सब सिद्धियां जैसे प्राप्त हो गई, कुछ नहीं चाहिए, आत्मा तृप्त है, भरपूर है, फिर संतुष्ट है। कई कहते हैं हम तो संतुष्ट हैं, मैं बता क्या संतुष्ट हो। अगर तुम संतुष्ट हो तो भरपूर हो, तृप्त हो, सब प्रकार से। चेक करना, योगी आत्मा बहुत संतुष्ट रहती है, तृप्त रहती है। इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति उसकी बन जाती, इच्छाओं की अविद्या हो जाती। और योगी की निशानी एक एक कर्म इंद्रिय शीतल हो जाती। योगी वो है जिसके अंग अंग सुगंधित है, शीतल काया वाले योगी। ये काया जो है शरीर, इसके उत्तेजनाएं खत्म हो जाती हैं, बड़ा सरल शीतल स्वभाव, शीतल अंग, अंग अंग सुगंधित। योगी वो है जो निंदा स्तुति, जय पराजय, मान हानि, दुख सुख, सब में समान स्थिति है। कुछ भी हो, कोई भी ग्लानी कर रहा है, आज ब्रह्मा बाबा ने कैसे योग की स्थिति बनाई, साकार में जब तक रहे तब तक कितना लोगों ने विरोध किया, कितनी गालियां दी, ग्लानी की, कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। बच्चे अनजान हैं, निर्दोष हैं, इनको पता ही नहीं है, बोलने दो। आज बोल रहे हैं, आज ये गाली दे रहे हैं, कल ये गिन गिन के फूल चढ़ाएंगे, क्या नशा था बाबा को। हम सब भी देखें, अगर कोई नीचे ऊपर बातें होती हैं, तुरंत उतावले नहीं हो जाओ, इसके ऊपर केस कर दूं, मानहानि का केस कर दूं, फलाना कर दूं, इसने ऐसा किया तो मैं भी ये कर दूं। योगी बच्चे ऐसा नहीं कर सकते। कोई आया हिसाब किताब बहुत धैर्यता से, शांति से, योग युक्त होकर के, योग के प्रयोग करो, संस्कारों पर प्रयोग करो। पहले, सबसे पहले तो योगियों को अपने संस्कारों को दिव्य और अलौकिक बनाने के लिए उस पर प्रयोग करना चाहिए। ऐसे बैठ जाओ बाबा की वो सर्व शक्तियों की किरणें आई, और जैसे लेजर किरणें रिफ्लेक्ट होए, सूर्य की किरणें कांच पर पड़कर रिफ्लेक्ट हो जाएं, ऐसे बाबा की वो पवित्र किरणें सर्व शक्तियों की इस प्रकृति पर आई और यहां से रिफ्लेक्ट होकर के अंदर के पतित संस्कारों का ऑपरेशन कर दिया, खत्म हो गए, आत्मा शीतल हो गई, उत्तेजनाएं समाप्त हो गई, क्रोध खत्म हो गया, काम विकार का अंश समाप्त हो गया। प्रयोग करो, पहले अपने संस्कारों पर प्रयोग करो, फिर अपने संबंधों में जो रुकावटें आ रही हैं, जगह जगह पर कोई न कोई विघ्न आ रहे हैं, उस पर प्रयोग करो, बैठ जाओ। ऐसे सबके प्रति बहुत शुभ भावनाएं, शुभ चिंतक वृत्ति से वायुमंडल बना दो। ये है ही ऐसा, ये तो बदलेगा ही नहीं, ये सुधरेगा ही नहीं। कई लोग ऐसे ऐसे योग करते हैं, योग कर रहे हैं, शुभ भावनाएं रख रहे हैं, लेकिन सोचते हैं बदलने वाला नहीं, तो बड़ा कड़ा है, ये तो रावण जैसा है, ये तो राक्षस है, अरे क्या बदलेगा। एक तरफ योग करे और दूसरी तरफ भावनाएं आपकी अशुभ हैं, कभी नहीं किसी लिए बहुत अच्छी है, ये तो परवश है, विकारों के अधीन है, संस्कारों के अधीन है। जरूर बाबा ने मुझे चुना है तो इनको भी बना के छोड़ेगा, ये भी बदल जाएगा, ये बाबा का बच्चा बन के रहेगा, वारिस बन के रहेगा, मेरी तो शुभ भावनाएं हैं, एक न एक दिन मेरे से भी आगे जाएगा। माताएं प्रयोग करके देखना, ये योग का प्रयोग किसी भी आत्मा को बदल सकता है, लेकिन जरा भी नेगेटिविटी नहीं चाहिए, बहुत बहुत शुभ भावनाएं। तो अपने संस्कारों पर, संबंधों पर, विघ्नों पर प्रयोग करके देखो। और फिर तो बाबा ने विश्व कल्याण की सेवा दी है। अरे बच्चे, प्रकृति के तत्वों को आपकी शांति की शक्ति चाहिए, पवित्रता की शक्ति चाहिए, बहुत उछल रहे हैं, तमोगुणी हो गए हैं, दुख दे रहे हैं। क्या प्रकृति पति के बच्चे, तुम प्रकृति जीत बन करके इस प्रकृति को कंट्रोल नहीं कर सकते? योगदान दो, कम से कम आपको तो नुकसान नहीं पहुंचा है। प्रकृति की सेवा है। और फिर बाबा कई बार कहते हैं, अरे बच्चे इतना दुख बढ़ रहा है, इतने अशांत हैं लोग, भयभीत हैं, परेशान हैं, चिंताओं में डूबे हुए हैं, आप इन सब को शक्ति दो, सकास दो, इनकी पुकार सुनो, इनकार करो। अब समय चाहिए इसके लिए, बैठना तो पड़े अंत में। आपको मेरे पास तो फुर्सत ही नहीं, मैं तो बहुत बिजी हूँ। इसलिए बाबा ने शायद लॉकडाउन करके कहा, बैठो बच्चे अपने घरों में। इसके लिए कम से कम एक घंटा सवेरे और एक घंटा शाम, अधिक नहीं तो दो घंटा तो निकालो। संस्कारों में दिव्यता, संबंधों में इतना मिठास, समीपता आ जाए, सब विघ्न एकदम खत्म हो जाए, शांति से प्रकृति को प्राप्त हो, को हमारे द्वारा फरिश्ते रूप का अनुभव हो कि कोई सहारे दाता है, मेरी सुनने वाले हैं। नहीं तो कहते भगवान भी नहीं सुनता मेरी, कहता मैं किसकी किसकी सुनो, मेरे बच्चे तैयार हो जाओ अभी, सुनो सबकी। लेकिन इसके लिए अंत में बैठ करके अपने भ्रकुटी आसन पर बैठ के बाकी शक्तियों को लेकर के ऐसे चारों तरफ वायुमंडल मनसा सेवा, और इस मनसा सेवा को अभी हमें बहुत बढ़ाना है, क्योंकि समय दिखा रहा है कि अभी तो पेपर आया है, अभी आगे कितने बड़े पेपर आएंगे। दुनिया का प्रश्न है, कलयुग को बदलना है, और कलयुग का इतना बड़ा प्रश्न, कितना दर्द होगा, कितना दुख होगा। इसलिए हम सब की दुनिया से निकले हैं। बाबा ने अपने बच्चों को सही, ये मेरे बच्चे मेरे मददगार बन करके इस कलयुग की सृष्टि को परिवर्तन करेंगे। तो कलयुग का कुछ हम संगम युगी ब्राह्मणों में नहीं, कोई भी कलयुग का चिन्ह परिस्थिति बना लो, हम संगम युगी हैं। हम सतयुग से किनारा कर लिया, दुख धाम को तलाक दे दी, धाम में जा रहे हैं। कोई भी दुख की घटना आए, दुख की लहर ना आए, हो सकता है ऐसा? कुछ कितना याद, ये पाठ पूरा हुआ, हिसाब चुक तो हो गया, आत्मा उसके प्रभाव में ना आए, ऐसी सुख स्वरूप स्थिति बनाओ। सुख के सागर के हम बच्चे हैं, जब हम सुख स्वरूप स्थिति में रहेंगे तब हमारे सुख के किरणें, सुख के वाइब्रेशन लोगों को पहुंचेंगे। हमारे एक अंदर ये दुख है, अशांति है, चिड़चिड़ापन है, ये ऐसे करती है, वो ऐसे करता है, यहाँ ऐसे होता है, यहाँ क्यों इनमें जाता है, बहुत पुराने हिसाब किताब चुप तो हो रहे हैं, हल्के हो जाओ, बहुत हल्के लाइट रह करके बाबा, जितना लाइट रहेंगे, जितना खुशी में आनंद में रहेंगे, जितना धैर्यवत रहेंगे, उतना जीवन बन जाएंगे। ये विधियां हैं, और इन विधियों के आधार से चलते खाते पीते लोगों को अनुभव होगा, ये लोग इस लोग नहीं, ये कोई अलग लोक के लोग हैं। हो सकता है ऐसा जीवन से, ये अलग लोक के हैं, ये साकार लोक के नहीं है, मानो नहीं है। ये अब अपने बच्चों को ऐसा बनाना चाहते, कौन कौन और उनके दिखाओ कि हम इस लोक में रहते हुए दुनिया की लोक लाज की परवाह किए बिना हम फरिश्ते के रूप में रहें, और फरिश्ता ड्रेस पहन करके हर आत्मा की सेवा करें। तब कहेंगे योगी जीवन वाले योगी सिद्ध रूप आत्माएं। ठीक है, तो चलो अभी आधा घंटे के लिए उड़ चलो, इस शरीर से करते हैं। सब अपने अपने भ्रकुटी आसन पर बैठो, आधा घंटे के लिए एकदम वतन बना दो, इसको शांतिवन को अव्यक्त वतन बना दो। अकाल मूरत मैं आत्मा इसी आसन पर विराजमान हूँ, बाप अनुभव को मैं मात पिता के बीच में विराजमान हूँ, दोनों की शक्तियां मुझे शंका लगा रही हैं, बहुत शक्तिशाली बाप दादा के साथ कंबाइंड होकर के मास्टर त्रिमूर्ति बन करके योग की गहरी अनुभूति करो। संकल्प बाद में देंगे, अभी इसी संकल्प में स्थित होकर के इस वतनी शक्तियां प्रवाहित करो, यही शांति धाम सूक्ष्मतन का अनुभव होने लगे। सभी शांति के सागर की, प्यार के सागर के तले में चले जाओ। उस समाने का अनुभव, लवलीन स्थिति का अनुभव करो। बाबा के प्यार में खो जाओ। बीज रूप बाबा के साथ कल्प वृक्ष के तने में जड़ों में बैठी हुई मैं तपस्वी आत्मा इस पूरे वृक्ष की सर्वात्माओं की पूर्वज हूँ। अपने पूर्वजपन के समान में स्थित होकर अपनी पूरी बिरादरी को पूरे कल्प की वंशावली को शक्तियों की शक्तियों का जल दो। अपने पूर्वज स्वरूप में स्थित होकर प्रकृति सहित सर्वात्माओं का कल्याण हो, सबकी मुक्ति हो, सबको शक्ति मिले, मनसा द्वारा सकाशित
हमारा।